आठवां अध्याय कामायनी के पात्र। कामायनी में कुल पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव, आकुल और किलात, किंतु विवेचन की दृष्टि से तीन ही पात्र महत्वपूर्ण हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। प्रसाद ने इन चरित्रों की वैदिक साहित्य से लेने की बात स्वीकार की है, पर वास्तव में देखा जाए तो कवि ने अपनी कल्पना से इन चरित्रों को गढ़ा है, क्योंकि वैदिक साहित्य में इन चरित्रों का क्षीण और स्थूल उल्लेख हुआ है, इनमें चारित्रगत वैविध्य का अभाव है। प्रसाद के सर्जक कलाकार ने इन चरित्रों को विशेष रूप से आकार और जीवंतता प्रदान की है। मनु ने आदि पुरुष का स्वभाव है, वह सामान्य मानव मन का प्रतिनिधि है, साथ ही वैयक्तिक विभिन्नताओं से युक्त विशिष्ट चरित्र भी है। श्रद्धा मन की रागात्मिका वृत्ति है, वह विश्वास की प्रतिनिधि है और उसमें व्यक्तिगत विशिष्टताएं भी हैं। यही बात ईड़ा पर भी लागू होती है, वह मन की व्यवसायत्मिकता वृत्ति है, तार्किक तथा संशयशील बुद्धि का प्रतीक है तथा नारी सुलभ विशिष्ट गुण भी उसमें हैं। कामायनी में एक ही पुरुष पात्र होने के कारण हम अलग अलग पुरुष वालों में व्यक्तिगत भिन्नता पाने से रह जाते हैं, परंतु प्रसाद ने श्रद्धा और ईड़ा इन दो स्त्री पात्रों की रचना समांतर रूप से करके उनकी भेदक विशेषताओं का आकलन करने का अवसर दिया है। इन दो पात्रों के चरित्रों को परख कर हम कवि को चरित्रगत शुभ और उसके महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। प्रसाद इतिहास के समुद्धारक ही नहीं, उसके शोषक भी हैं। वे इतिहास के मृत चरित्रों का को मानवीय संस्पर्श देकर जीवन रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैदिक साहित्य में मनु और ईड़ा का बड़ा क्षीण और अस्पष्ट उल्लेख हुआ है। एक ही वस्तु का वर्णन दो भिन्न स्थलों में प्रकारांतर से हुआ है। इस स्थल पर ईड़ा को मन की दुहिता बताया गया है, एक स्थल पर ईड़ा को मन की दुहिता बताया गया है। प्रसाद ने कुछ एक बिंदुओं से बने इन धुंधले चरित्रों का इतना स्पष्ट, गरिमामय तथा यथार्थ रूप में चित्रण किया है कि कामायनी इन चरित्रों के बल पर इतना गौरवपूर्ण बन सकी है। प्रसाद के चरित्र चित्रण की विशेषता यह है कि पात्रों की ऐतिहासिकता की रक्षा करने में उसके व्यक्तित्व को तिरोहित नहीं करते। प्रसाद के पात्रों में उनके व्यक्तित्व की झलक प्रायः देखी जा सकती है, पर जहाँ तक संभव होता है कवि पात्रों के व्यक्तित्व को अपने प्रकृति रूप में प्रस्तुत होने देता है। मनु या देव सभ्यता के ध्वंस के अवशिष्ट एक पुरुष है, जो नियत की प्रेरणा से मानव सृष्टि की पुनर्रचना हेतु प्रलय में भी बचा रहता है। जल प्लावन से उबरने के लिए यह पतवार विहीन नौका पर निराश बैठा रहता है कि महामत्स्य के एक थपेड़े से नौका हिमगिर की उत्तुंग चोटी से जा टकराती है, एकाएक पृथ्वी पर जल का स्तर घटने लगता है और धरती दिखलाई पड़ने लगती है। मनु को अपने विषय में चिंता होती है, वह देव सभ्यता के भोग विलास में जीवन का स्मरण करके और पुनः उसके करुण विध्वंस को सोचकर दुखी होता है। स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले मनु का चित्रण इस प्रकार हुआ है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत सिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, चिंता सर्ग। मनु अपने एकाकी जीवन से क्षुब्ध है, इस जीवन से तो मृत्यु ही उसे सुखदायक जान पड़ती है। जल हट जाने और धरती पर हरितिमा छा जाने से उसमें आस्तिक बुद्धि का संचार होता है और वह परम सत्ता के प्रति क्षण भर के लिए साधान्वित हो जाता है। उनमें आशा का संचार होता है, किंतु अपने अकेलेपन का विचार करके वह खिन्न हो जाता है। मनु पाक यज्ञ करने लगता है और यह सोच सोच कर पुलकित भी होता है कि शायद मेरी तरह कोई दूसरा व्यक्ति भी जीवित है। संयोग जनित सुख की कल्पना से वह अधीर हो उठता है। एकाएक मन के समक्ष श्रद्धा उपस्थित होती है। वह मन का परिचय जानने के लिए प्रश्न उससे करती है। श्रद्धा मन उस श्रद्धा के दिव्य सौंदर्य को आश्चर्य भरी आँखों से निरखने लगता है। वह अपने असहाय जीवन के प्रति दुख व्यक्त करता हुआ श्रद्धा के आगमन को अपने लिए हितकर बताता है। श्रद्धा मन के जीवन में उत्साह भरते हुए उसे कर्म की प्रेरणा देती है और स्वयं उसकी सहायक बनना स्वीकार करती है। श्रद्धा के साहचर्य से मन में काम का संचार होता है। वह कामजन्य सुख की सिरहत से क्षण भर के लिए व्याकुल हो जाता है। साथ ही उसकी नश्वरता और परिणाम का स्मरण करके वह उससे मुख मोड़ लेने का निर्णय लेता है। काम स्वप्न में मन को कर्ममय जीवन के लिए प्रेरित करता है। वह यह भी बताया है और यह भी बताया है कि श्रद्धा जो मेरी ही पुत्री है मन को पूरी तरह से सहायता कर सकती है। काम कर्ममय जीवन महत्व को प्रतिपादित करता हुआ कहता है, यह नीड मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें इतना बल है। काम सर्ग कुछ काम की प्रेरणा और कुछ श्रद्धा के प्रति अपने दुर्निवार आकर्षण के कारण मनु कर्म को स्वीकार कर लेता है। उसके गृह में श्रद्धा के सद्योग से सस्य पशु आदि इकट्ठे होने लगते हैं। मनु श्रद्धा से के पालित पशु के प्रति उसके स्नेह को देखकर ईर्ष्या से भर जाता है, किंतु श्रद्धा के सरलतापूर्वक व्यवहार से वह पुनः शांत हो जाता है। जीवन के प्रति लालसायुक्त होने के कारण मन में काम भाव जागृत होता है, इसीलिए श्रद्धा उसे कुछ दूसरे रूप में ही दिखाई पड़ती है। मनु श्रद्धा को सृष्टि के आकर्षण केंद्र के रूप में देखता है। वह श्रद्धा को अपने भूले हुए हृदय की चिर खोज कहता है और चाहता है कि श्रद्धा उसके प्रति अपने हृदय के बंद कपाट खोल दे। वह विश्व रानी और जगत की श्रद्धा को अपनी संपूर्ण चेतना भेंट के रूप में समर्पित करता है। मनु श्रद्धा से कहता है, कामना की किरण का जिसमें मिला हो ओज, कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिर खोज, आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्व रानी सुंदर नारी जगत की मान। वासना सर श्रद्धा के उत्साह वचन और काम की प्रेरणा से मन कर्म के प्रति उन्मुख होता है, किंतु वह देव स्वभाव के अनुकूल कर्म को स्वार्थ केंद्रित मानकर हिंसात्मक यज्ञ करना चाहता है, जिसमें सोमाद्रि इंद्रिय परिनियोग की सामग्री भी उपलब्ध होती है। मन काम के प्रेरणादायक वचन का भ्रांतिपरक अर्थ लेने के कारण ऐसा सोचता है। श्रद्धा के उत्साह वचन फिर काम प्रेरणा मिलके भ्रांत अर्थ बन आगे आए, बने ताड़ थे तिल के, बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर हुआ पुष्ट करती है। कर्म सर्ग मनु यज्ञ कर्म करने की बात सोचता ही रहता है कि असुर पुरोहित आकुल और किलात आकर मनु को यज्ञ करने को कहते हैं। वे दोनों पौरोहित्य करने को तैयार हो जाते हैं। यज्ञ में श्रद्धा द्वारा पालित पशु का वध होता है। इससे श्रद्धा अत्यंत दुखित होती है। श्रद्धा द्वारा उलाहना मिलने पर मनु स्वार्थवाद की उद्घोषणा करता है, तुच्छ नहीं है अपना दुख भी सुख भी श्रद्धे वा भी कुछ है, तुच्छ नहीं है अपना सुख भी श्रद्धे वा भी कुछ है, दो दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। कर्म सर्ग श्रद्धा की संप्रेरणा का मन पर कोई असर नहीं होता है। एक बार पशु का मांस का स्वाद पा चुकने के बाद वह अहर्निश मृगया में ही व्यस्त रहता है। इधर श्रद्धा गर्भवती हो जाती है। एक दिन जब वह मृगया से लौटे थके मादे मन को अपने भावी शिशु की स्वनिर्मित पालना दिखाती है, मन शिशु के प्रति ईर्ष्या से भर कर क्षुब्ध हो जाता है और श्रद्धा के विभक्त प्रेम को अस्वीकार करके उसका परित्याग कर देता है। मनु श्रद्धा को छोड़कर सारस्वत प्रदेश में जा पहुंचता है। वहां काम उसकी भावी सृष्टि को शाप देता है, मनु ईड़ा के अव्यवस्थित साम्राज्य को सुसंगठित करता है और अंत में ईड़ा पर अधिकार रखना चाहता है। इस प्रयत्न में वह घायल होकर युद्ध क्षेत्र में पड़ा रहता है। इधर श्रद्धा अपने पुत्र को लेकर मनु को खोजते खोजते वहीं जा पहुंचती है जहां मनु मूर्छित पड़े हुए हैं। मनु श्रद्धा के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार करता है किंतु उसी रात पुनः पलायन कर जाता है। अंत में श्रद्धा मन को पुनः खोज लेती है। वह शांत मन को मानसरोवर ले जाती है जहां मन को आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह नहीं है कि कामायनी के प्रारंभ में चित्रित मनु का चारित्रिक सौंदर्य उत्तरोत्तर क्षीण होता गया है। प्रसाद जैसा श्रेष्ठ कवि अपने कथा नायक के चरित्र के प्रति असावधान रहा हो, इसकी संभावना नहीं की जा सकती। प्रसाद ने कामायनी में ही नहीं, नाटकों और कहानियों में भी चरित्र चित्रण के प्रति असावधानी कहीं नहीं बरती है। उनके निकृष्ट पात्रों में भी उतना ही चारित्रिक उत्कर्ष है जितना कि उत्कृष्ट पात्रों में। कवि के संपूर्ण वांग्मय में अकेला मनु ही है ऐसा चरित्र है जो कामायनी जैसे महाकाव्य के प्रधान चरित्र के रूप में बड़ा ओछा लगता है। इतिहास की को अविकृत रूप में प्रस्तुत करने की कवि की मुख्य प्रतिज्ञा रही है, लेकिन प्रसाद को मनु वैदिक से काफी भिन्न हो गया है। इतिहास को गढ़ने में कवि ने अपनी कल्पना को ऐसी बेढंगी क्यों जाने दिया, यह गंभीर विवेचना का विषय है। मनु के चरित्र निर्माण में प्रसाद ने कुछ स्वतंत्रता ही से काम लिया है। विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के इतिहास में प्रायः यही विश्वास रहा है कि पुरुष के अधोपतन में स्त्री का हाथ रहा है। प्रसाद इस धारणा से सहमत नहीं थे। उन्होंने कामायनी में नारी की जीवन की चुनौतियों की बात स्वीकार करते हुए दिखाया है। इसके विपरीत मनु हमेशा पलायनवादी रहा है। प्रसाद ने यह भी दिखाना चाहा है कि मानव सभ्यता देव सभ्यता से समुन्नत और सभ्य है। देव सभ्यता के अवशेष मनु में स्वभावतः ही अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ अधिक है। उनका आत्मसंकोच उसमें अविश्वास उत्पन्न करता है। यही कारण है कि काम के संदेश को वह तुरंत नहीं ग्रहण करता। मन के माध्यम से कवि ने मनुष्य की परंपरा दो विपरीत प्रवृत्तियों से टकराहट भी दिखाई है। काम एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मनुष्य के आत्मविस्तार का कारण बनती है, किंतु भविष्य के उत्तरदायित्व और अपने अहम के कारण वह काम का समुचित ग्रहण नहीं करता। मनुष्य में जब तक अहम जनित आत्मसंकोच है, उसमें आस्तित्य बुद्धि का उदय नहीं होता। प्रलय में मनु को अपनी तुच्छता का ज्ञान होता है और वह हे अनंत हे विश्वदेव कहकर परम सत्ता के प्रति विनयशील होता है। कवि ने मनु को आदिमानव के रूप में ही दिखाया है। मनु श्रद्धा के प्रति काम भाव से आकृष्ट होता है, किंतु उसे अपने इस व्यवहार पर स्वयं आश्चर्य होता है। आदिमानव होने के कारण मनु श्रद्धा को भी अपने समान समझता है। मन को लिंग भेद का ज्ञान नहीं है। ऐसी ध्वन मन ने कुछ कथनों से निष्फल की जा सकती है। मन संतान उत्पन्न करके एक प्रकार से अपना ही सृजन करता है। सृष्टि का उद्देश्य आत्मविस्तार है। आदिमानव होने के कारण मनु इस तथ्य से अवगत है। वह अपने को और केवल अपने को देखता है। दूसरे से वही एक संबंध रखना चाहता है जहाँ तक उसके स्वार्थ की क्षति नहीं होती। यही कारण है कि मनु श्रद्धा के पालित पशु और अपनी भावी संतान से ईर्ष्या करता है और इन सब के प्रति श्रद्धा के सहज प्रेम को वह प्रेम बांटने का प्रकार कहता है। कवि के मन के सामान्य स्वभाव को भी मनु के चरित्र में संश्लिष्ट कर दिया है। मनुष्य का मन स्वभावतः चंचल होता है और एक वस्तु से उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती है। मनु ऐसी ही चरित्र है। वह नारी की बाह्य और आंतरिक सुषमा से मंडित श्रद्धा का परित्याग करता है तो उधर ईड़ा को अपनी वटावर्तनी बनाना चाहता है। यह भी मन की विडंबना है। स्वतः आगत और समर्पित श्रद्धा का तिरस्कार किया जाता है, और अनिच्छुक श्रद्धा को ईड़ा को अपनाने की मनु जटिल का चरित्र होकर अपने वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक और व्यक्तित्व जटिल संबंधों से संश्लिष्ट है। मन के चरित्र के अनेक परिप्रेक्ष्य हैं जिसमें कवि का निजी हस्तक्षेप भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी कवि रचना के दौरान अपनी पूर्ण स्थापना से सहज ही दूर भी चला जाता है। मन के चरित्र का मूल्यांकन करते समय हमें कवि के साथ बहुत उदार होना पड़ेगा। केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मन के चरित्र का के चरित्र की परीक्षा अन्याय है। श्रद्धा श्रद्धा के चरित्र के संगठन में कवि की विशेष संशक्ति और संगठन रहे हैं। यह कामायनी का सबसे प्रमुख चरित्र है और स्त्री होते हुए भी नायक का कार्य भी यही संपन्न करती है। कवि ने इस पात्र में अपने आदर्श के अनुसार नारी जात के उदात्त गुणों को शक्तिविष्ठ किया है। श्रद्धा विशिष्ट पात्र भी है और सामान्य पात्र भी। अपनी सामान्यता के कारण वह किसी भी युग में किसी भी देश की श्रेष्ठ नारी का प्रतिनिधि बन सकती है, और अपने विशेष चरित्र के कारण वह नारी चरित्र के रूप में वह भारतीय साहित्य को प्रसाद की अप्रतिम देन है। देववंश में उसकी भी उत्पत्ति हुई है। ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह हिमालय में गंधर्वों के बीच कुछ दिन के लिए रहने लगती है। एकाएक प्रलय की असंभावित घटना घटती है और प्रलय ध्वंस में वह अकेली बच जाती है। श्रद्धा में ललित कलाओं के ही प्रति अभिरुचि नहीं है, प्रकृति दृश्य भी उसके मन को बहुत मोहते हैं। शैलमालाओं का श्रृंगार देखने के लिए वह हिमालय की उपत्यकाओं में नियमित घूमती है। श्रद्धा में इतनी अधिक आत्मविस्तार है कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का वह सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रलयोपरांत अकेली होने पर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह विश्वासमयी है। वह सोचती है कि मेरे समान शायद कोई और भी जीवित हो। मन को नतमुख और विषण देखकर वह उनके लिए उनके क्लेश को समझ जाती है, और निस्वार्थ भाव से वह उसका कष्ट दूर करने के लिए स्वयं समुपस्थित होती और प्रश्न करती है। इस प्रकार कवि ने श्रद्धा के चरित्र के माध्यम से नारी जात में निहित आस्था और श्रद्धा को मूर्तिमान किया है। श्रद्धा का चरित्र बड़ा ही ऋजु और विरल है। कामायनी में उसके चरित्र का उज्ज्वल पक्ष ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, और वह भी अपने संपूर्ण उदात्तता में। फिर भी उसके चरित्र में हमें कहीं भी अस्वाभाविक नहीं लगता। यह कवि के चरित्र निर्माण कौशल का बहुत बड़ा आश्चर्य है। श्रद्धा बड़ी सहजता से मनु से प्रथम वार्तालाप करती है और उससे अपेक्षित उत्तर पाए बिना ही उसकी सहयोगिनी बन जाने को तैयार हो जाती है श्रद्धा का यह व्यवहार हमें आकस्मिक और अस्वाभाविक लगता है।